厉害
啊。
दूसरे कोई ऐसे जैनाचार्य नहीं मिलेंगे जिन्होंने इतना कम लिखा हो और इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की हो। जैन आचार्यों की प्रसिद्धि का कारण उनका लेखन ही होता है। मुक्ति प्राप्त करने वाले अनगिनती महाराजों में कितने ऐसे थे जिनको हम याद करते हैं। हमारे स्मृति का विषय है, हमारी चर्चा का विषय वे ही मुनिराज बनते हैं जिन मुनिराजों पर उत्तर हुए हो, ठीक है। या फिर भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में इस पंचम काल में हुए मुनिराजों के स्मरण की बात करें हम, तो पिछले 2000 वर्षों में 2500 वर्षों में अनगिनती मुनिराज हुए होंगे, कोई गिनती नहीं है हमारे पास में, लेकिन हजारों लाखों की संख्या में हुए हैं, लाखों की संख्या में हुए हैं। क्योंकि हर 100 साल के अंदर तो पूरी सृष्टि बदल जाती है, समझ लो आप। आज के जितने मनुष्य हैं, 100 साल पहले जितने मनुष्य थे जो थे, आज उनमें से एक भी नहीं पृथ्वी पर, सब बदल गए। तो उन लाखों मुनिराजों में से कौन कितने मुनिराजों को याद करता रहता, जिन्होंने कुछ लिखा हो, जिनका कुछ लेखन हो, जिनका कुछ साहित्य हो। माने कोई भी मुनिराज अपने साधना के दम पर लंबे समय तक जीवित नहीं है, अपने लेखन के दम पर जीवित हैं। ये मुनिराज कोई कम हो गए हो या उनकी कोई स्तर गिर गया हो, ऐसा नहीं है। जिन्होंने साधना की थी उनका स्तर उत्कृष्ट ही था, लेकिन प्रसिद्धि नहीं। लेखन करने वाले मुनिराज भी कम नहीं हुए 2000 वर्षों में, लेकिन जिन्होंने कम से कम लिखा और सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की, उन आचार्यों में हुआ स्वामी का काम। हुआ स्वामी आचार्य की अनुपम रचना तत्वार्थ सूत्र, सात तत्व और उनके व्याख्यान के लिए समर्पित है। मोक्ष के मार्ग से चर्चा को प्रारंभ किया। मंगलाचरण इतना सुंदर था कि उस मंगलाचरण से भी ये बात झलकती थी कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। ये मंगलाचरण भी ऐसा था। मंगलाचरण इस प्रकार का है जिसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मंत्र बहुत होंगे दुनिया में, बहुत मंगलाचरण होंगे, नमः श्री वर्धमानाय निर्भूते कैलासमरे सालोका नाम त्रिलोका नाम यह विद्या दर्पणाय थे, नमः श्री आदिनाथ आए, कहीं आदिनाथ को नमस्कार होगा, कहीं महावीर को नमस्कार होगा, कहीं पार्श्वनाथ स्वामी को स्मरण करके कोई श्लोक मंगलाचरण लेके जाएंगे। इस मंगलाचरण में किसी परमात्मा का नाम नहीं है, किसी परमात्मा का नाम नहीं है और कोई परमात्मा छूटे नहीं है। क्या अद्भुत है, मतलब इसलिए जैन धर्म गुणों की पूजा करता है। जैन धर्म में व्यक्तिवाद नहीं है, जैन धर्म व्यक्ति प्रधान नहीं है। जैन धर्म ये नहीं कहता कि इस कुल परंपरा से होगा, इस परंपरा से होगा। जैसे राजतंत्र जिस तरह से चलता है ना, राजा के जो पुत्र होंगे वो ही शासन करेंगे, उनके जो पुत्र होंगे वो ही शासन करेंगे। यहाँ जैन धर्म में ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति परमात्मा बन सकता है, बशर्ते इस मार्ग पर चले और इन गुणों को प्राप्त करे, जिसमें सर्वज्ञता हो, जिसमें हितोपदेशी पना हो, जो वीतरागी हो, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो वो परमात्मा। और कह दिया मुझे भी ये गुण चाहिए, बंदे सदगुण लब्ध है, उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। चलिए मंगलाचरण का जो दूसरा पार्ट था, जो थोड़ा कम मिलता है, उसमें कुछ संक्षेप में चर्चा इस प्रकार की आ गई, जिन विषयों को हम आगे बताने वाले हैं। सूत्र प्रारंभ हुआ, ग्रंथ प्रारंभ हुआ मोक्ष मार्ग से, मुक्ति का मार्ग क्या है। तो सबसे पहले बतला दिया सम्यक दर्शन ज्ञान क्या प्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मुक्ति का मार्ग है। इधर ये तो तीन गहरे हो आप, तीन रास्ते हैं क्या, इधर से चले जाओ, उधर से चले जाओ, उधर से चले जाओ। जैसे आपके घर पहुंचना हो तो इस रोड से जाओ तो भी पहुंच जाओगे, उस रोड से जाओगे तो भी पहुंच जाओगे। ये तीन रास्ते हैं क्या, बोले नहीं नहीं तीनों मिलकर के एक रास्ते हैं। दिखते तीन अलग अलग हैं, वास्तव में ये तीन रास्ते नहीं है, रास्ता तो एक ही है, मोक्ष का मार्ग एक ही है। एक हो त्रण काल मां परमारथनो मां, परमार्थ का मार्ग तीन काल में एक ही होता है, चाहे आज बात करो, चाहे सौ साल बात करो, चाहे पंचम काल में, चाहे चौथे काल में। नहीं था पंचम काल चल रहा है, इसमें थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन मिलना चाहिए, थोड़ा सहनन कम है लोगों का। पंचम काल में तो साहब क्या बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो परिवर्तन हो जाना चाहिए कि नहीं पंचम काल में। अच्छा पंचम काल में थोड़ा बहुत आप परिवर्तन चाहते हैं तो किस किस चीज में परिवर्तन चाहते हैं ये बताओ। चौथे काल में अग्नि कैसी होती थी, गर्म होती थी, पूजन होती थी 100%। तो पंचम काल में थोड़ा बहुत ठंडापन होना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं नहीं होना चाहिए परिवर्तन, होगा अग्नि ठंडी हो जाएगी, क्या बात करते हैं आप, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकती। वस्तु का स्वरूप कभी नहीं बदल सकता, ये स्वरूप है, ये मोक्ष का मार्ग वस्तु स्वरूप है, ये कभी नहीं बदल सकता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, ये कभी नहीं बदल सकता है। पहले गुणस्थान से जीव को चौथे गुणस्थान की प्राप्ति होती है, ये स्वरूप कभी नहीं बदल सकता है। ये जीव अनादिकाल से मिथ्या वृत्ति है, ये स्वरूप है इसका। अपने पुरुषार्थ से आत्म श्रद्धा ज्ञान आचरण पूर्वक, अपने स्वरूप की समझ पूर्वक ये जीव अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करता हुआ चौथे गुणस्थान को प्राप्त करता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सब अनंतानुबंधी का अभाव होता है, ये स्वरूप है। सम्यक दर्शन के बिना अनंतानुबंधी का अभाव नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना अनंत संसार का अभाव नहीं होता। बोलो आप क्या है सम्यक दर्शन, तत्वार श्रद्धान। तुम्हारे स्वामी महाराज ने दूसरे सूत्र में कहा तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन। भाई साहब तत्व की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं, और तत्व किसे कहते हैं कि वस्तु स्वरूप को तत्व कहते हैं। जिस वस्तु का जो भाव हो वो तत्व कहलाता है। नमक का तत्व क्या है, खारापना। और मिट्टी का तत्व क्या है, मीठापना। और नींबू का तत्व क्या है, आत्मा का तत्व क्या है, जानना। पर आप कौन हो? आत्मा के शरीर आत्मा, तो आपका मूल तत्व क्या है? कि जानना, देखना और करते क्या हो? वो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? कोई जीव, कोई वस्तु, कोई पदार्थ अपने काम को छोड़कर दूसरे का काम करने लगे है तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मात्र जानना मेरा काम, आत्मा का काम जानना देखना है, ज्ञाता दृष्टापन है। यदि वो जानने देखने का काम छोड़ करके कोई दूसरा काम करने लगे, माथे पर वजन उठाने लगे, बिजनेस करने लगे, परिवार को चलाने लगे, ये उल्टे पीछे काम करेगा और इनका कर्ता अपने आप को मारेगा, तो अनंत संसार की जेल नहीं मिलेगी तो क्या होगा? गलत काम करेगा तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या आप तो गजब करते हो, हमारी गृहस्थी चौपट करोगे ऐसी बातें कहकर? अरे तुम चला, तुम्हारे चलाने से चलती भी नहीं है। ज्ञानियों की गृहस्थी कैसी चलती है इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुमसे एक नहीं संभलती है, चक्रवर्ती छेड़ना ज्यादा संभालता है। हमने दृष्टि ज्ञानी नित्या दृष्टि नहीं संभाल सकता। सम्य दृष्टि यानी जीव का जीवन कैसा होता है सोचो आप। अनंतानुबंधी का अभाव हो गया उसके, अनंत संसार मिट गया है। सम्य दृष्टि चौथे गुणवत्तावर्ती जीव क्या जीवन होता होगा? अनंतानुबंधी जिसके जीवन में से चले गई, अनंत संसार जिसके जीवन में से चला गया, भाई साहब ये अनंतानुबंधी कितनी पावरफुल है समझ लो। हम बन जाते 4999999 कर्जा है माथे पर 9999 का, कितने रुपए देने आसिफ भाई को बोलो? अब क्या करें? 9 रुपए दिए मैंने, मैंने कहा बोलिए ना 9999 और 9 रुपए दिए, 1 9 में डाल दो, इट इज पॉसिबल? 9 रुपए देकर एक मिल जाएगा ना, एक मिल जाएगा, बाकी कितने बचेंगे?
9,990
इसलिए मिटाया है हमने, उसकी जगह 0 नहीं लगाना। तीन रह जाएंगे। अरे भाई साहब ये जो 1 9 हटेगा ना इसमें, इस 9 को हटने की कीमत 9 रुपया नहीं है, 9,000 रुपया है। ये 1 9 9,000 में हटेगा, 9 रुपए में नहीं हटेगा। और ये पहला वाला ये इधर से हटाओ के इधर से हटाओ, अरे चलो कोई बात नहीं पंडित जी, इधर वाले की कीमत यदि 9,000 है तो आप किधर वाला हटा दो, किधर से इसे हटाओ। 1 9 यदि हटेगा तो कीमत पूरी चुकानी पड़ेगी, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। अनंतानुबंधी इतना खतरनाक है, सबसे ज्यादा रेंजेबल है। वो चला गया अनंत संसार घट करके अंश मात्र रह गए, और किसी व्यक्ति के अनंतानुबंधी गया नहीं और अप्रत्यय जन जाने की बात करे तो होता नहीं। बस बाहर से देखने पर दिखती नहीं है ये पहचान। कोई व्यक्ति बाहर से बहुत शांत दिखाई दे रहा है, मिथ्या दृष्टि है, पहले गुणस्थानवर्ती है, बहुत शांत दिखाई दे रहा है, दुनिया देख करके कहे इनके कहा अनंतानुबंधी है, हमने तो कभी इनके चेहरे पर गुस्सा ही नहीं देखा, किसी के फेस पर यदि हमने कभी क्रोध नहीं देखा हो तो इसका मतलब उसके अनंतानुबंधी नहीं होगी। क्यों भाई साहब? अनंतानुबंधी का संबंध इस बात से नहीं है कि आप कितना प्रदर्शन कर रहे हो क्रोध का। धर्म का संबंध क्रोध के प्रदर्शन से नहीं है, अंदर में कितना है उससे संबंध है। अंदर में आप सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो इसकी पहचान अंदर से होगी। कौन व्यक्ति यहाँ आकर के भगवान के कितने बार पाप पड़ता है इससे सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। कौन कितने दिन बीच में आकर के पूजन करता है, दर्शन करता है, स्तुति करता है इससे सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध ये है कि वो अपने आप को मानता क्या है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीव जो होते हैं ना, पहले गुणस्थान और चौथे गुणस्थानवर्ती, ये फोटो खींचने से नहीं पकड़ने आएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग से भी नहीं पकड़ सकते आप। ऊपर के गुणस्थान वाले माने पंचम गुणस्थान वाले हैं, अनुव्रति हैं, छठवें सातवें गुणस्थान वाले हैं, कदाचित उनका तो बाहर से भेद भी दिखे, मुनि जीवन तो दिखेगा बाहर से, लेकिन चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति जो हो गई है उसका बाहरी जीवन और अंदर इन दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन उस सम्यक दृष्टि की रिकॉर्डिंग लाइफ की और मिथ्या दृष्टि की लाइफ की रिकॉर्डिंग इन दोनों में आपको अंतर नहीं दिखेगा। क्या कह रहा हूं मैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना क्या कहता हूं। सम्यक दृष्टि जीव बिजनेस कर सकता है, सम्यक दृष्टि जीव परिवार के पास में रह सकता है, जॉब कर सकता है, गाड़ी चलाएगा, नई गाड़ी खरीदेगा, नया मकान बनाएगा, ये सम्यक दृष्टि यानी जीव का हो सकता है जीवन ऐसा। गुणस्थान चौथा है उसका, माने सम्यक दृष्टि यानी जीव के जीवन में ये सारी बातें हो सकती है, किन्तु ध्यान रखना अनिति अन्याय पक्ष नहीं होगा। माने वो एक जो एक सामान्य सदाचार है ना, जो लोक व्यवहार है, जो सदाचार है, जो धर्म नहीं, शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, अंडा नहीं खाता, ये कोई जैन धर्म नहीं है, ये सारी बातें तो हिंदू भी नहीं करते, ये तो सदाचार है, ये तो एक मनुष्योचित जीवन है। फिर आप समझिए शाकाहार तो मनुष्य का आहार है, मैं तो कहता हूं नॉन वेज तो मनुष्यों का आहार नहीं है, क्योंकि मनुष्यों के दांत और आंत दोनों ही इस प्रकार की नहीं है जो नॉन वेज के हिसाब से बनी है, दांत भी नहीं और आंत भी नहीं, इसलिए उनकी तो बात ही नहीं है। उन सब चीजों का पालन करना वो तो लाइफ में कहता है जैसे सामान्य है, सदाचार है, अब उस सदाचार का तो पालन होगा ही होगा, अनिति नहीं होगी जीवन में, अन्याय नहीं होगा, अवश्य नहीं होगा, ठीक है ना। इतना सब होने के बाद बाहरी जीवन जैसा हमारा वैसा आपका, वैसा आपका वैसा, सम्यक दृष्टि जीव का जैसा मिथ्या दृष्टि जीव का, सब एक जैसा दिख रहा है बाहर से देखने, अंतर कहां पड़ा, अंतर पड़ गया अंदर की मान्यता अभिप्राय। अब सोचो आप ऊपर चलो थोड़ा सा, पंचम गुणस्थान में आ गए, छठवें सातवें गुणस्थान में आ गए, मुनि बन गए, मुनि की अनंत बार माना एक का मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी रहेगी, तो क्या गड़बड़ी रही होगी बताओ, सम्यक दर्शन नहीं था भाई साहब, बिना सम्यक दर्शन के व्रत अंगीकार करेगा तो क्या होगा, ये तो ऐसी स्थिति हो गई कि टिकट भूल करके एयरपोर्ट पहुंच गए, अब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में वहां से वापस आने के अलावा, फ्लाइट छोड़ने के अलावा, बोलो कुछ नहीं हो सकता है। और खतरनाक बात कहूं तो दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी थी अमेरिका के लिए और पासपोर्ट जयपुर भूलाए, अब क्या होगा बताओ, अब आप कुछ नहीं हो सकता है। बस ऐसे ही था, मुनि बन करके मोक्ष के लिए फ्लाइट पकड़नी थी और सामने कैप्टन वाला किसी जेब में था नहीं, अब क्या होगा, बैठ तो पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सामने कैप्टन रूपी टिकट के बिना यदि तुम मोक्ष की फ्लाइट पकड़ने की कोशिश करोगे तो कितना भी आगे निकल जाओ लास्ट स्टेज पर जाकर के आपको वापस लौट करके आना पड़ेगा, नहीं भाई साहब एंट्री नहीं है टिकट पर आपका, तो क्या जरूरत है सम्यक दर्शन की बात में कर लेंगे, बोले नहीं सम्यक दर्शन के बिना नहीं चलते, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता। और सुनो वो टिकट चेक करते समय कह देगा तुम्हें तत्वार पत्र नहीं पड़ा, तुम इस लेवल तक आ गए, तुम व्रती हो गए, तुम अनुव्रतों का पालन कर रहे हो, तुम महाव्रतों का पालन कर रहे हो, तुमने सत्वार सूत्र नहीं पढ़ा ये बात नहीं है, तुमने सत्वार सूत्र का पहला सूत्र भी नहीं पढ़ा, तुमने दर्शन ज्ञान चारित्र प्राणी मोक्ष मार्ग, तुमने दर्शन तुमने ज्ञान और तुमने चारित्र, तुमने दर्शन पहला शब्द है गुरु इस महान ग्रंथ का, सत्वार श्रद्धानम तुमने दर्शन हम कहते हैं, क्या हो जाता होगा, क्या कमी रह जाती होगी। सम्यक दर्शन माने अपने में अपनापन, निजमा निज बुद्धि था इसका नाम सम्यक दर्शन, अपने में अपनेपन की बुद्धि इसका नाम सम्यक दर्शन है। तू परमात्मा छू, तू ज्ञाय छू, हूँ आत्मा छू, बस ये मैं त्रिकालिक रूप ज्ञायक आत्मा हूँ। शरीर से भिन्न चैतन्य तत्व की अनुभूति, आप अपने आप को मानते क्या है? मुनिराज अपने आप को मुनिराज नहीं मानते, मुनिराज अपने आप को आत्मा मानते। आप अपने आप को क्या स्वीकार करते बोलो? मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि जीव में क्या पहचान होगी? नाम बताने में कोई ऐतराज नहीं है, शब्द तो हो सकते हैं, व्यवहार हो सकता है, बात तो मान्यता की है, मानते क्या हो आप अपने आप को? मिथ्या दृष्टि जीव अपने आप को बिजनेसमैन मानता है, अपने आप को व्यापारी मानता है, सर्विस क्लास मानता है, अपने आप को मनुष्य मानता है, अपने आप को पहली पंचेंद्री मानता है, मनुष्य समझ रहा है अपने आप को। सम्यक दृष्टि यानी जीव अपने आप को त्रिकाली समझता है, अपने आप को आत्मा को बोलो।
सम्यक दर्शन जिसको हो गया उसको अनंता यदि अनुभव छूटे तो कतर होगा, क्योंकि कतर छूट जाएंगे तभी नहीं करो, कतर छूट जाएंगे तभी समय तो समय करके जी ऐसे आता
करते हाँ। देखिए क्या है स्थिति, कषाएं चार प्रकार की है, एक अनंतानुबंधी है, कौन सी? नहीं अनंतानुबंधी ये तो एक प्रकार की कषाय है, अनंतानुबंधी में भी क्रोधमान माया लोग होते हैं, फिर सेकंड नंबर पर है अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोग, फिर है प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोग, और फिर है संज्वलन क्रोधमान माया लोग। मुनिराजों के जीवन में संज्वलन क्रोधमान माया लोग हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मुनिराज को गुस्सा नहीं आ सकता। पानी की लकीर का एग्जाम्पल लेकिन मैं बता रहा हूँ, थोड़ी चल एक बार समझ लो, कोई बात नहीं, नहीं आता है तो अच्छी बात है, प्रश्न पूछना बहुत अच्छा है, प्रश्न पूछने से अपने डाउट क्लियर होते हैं, है ना, जो नहीं समझ में आए बराबर पूछना। कषाय चार प्रकार की है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन। अनंतानुबंधी सबसे पहले नंबर पर याद रखना भाई, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन। वापस बोलता हूँ, पूछूंगा चार बार क्यों बोल रहा हूँ, बार बार कितनी बोल रहा हूँ, इसलिए कि आपको याद हो जाए, और आपको ये कुछ मतलब नहीं है तो फिर तो क्या है, फिर तो चलेगा सब ऐसे ही, फिर तो मेरी भी क्या जरूरत है, फिर तो कैसे चला लो किसी की, फिर तो क्या जरूरत है। सबसे पहला नाम क्या था? बहुत अच्छा, दूसरा अप्रत्याख्यान, सेकंड नंबर पर अप्रत्याख्यान, थर्ड नंबर पर प्रत्याख्यान, फोर्थ नंबर पर संज्वलन। ये सब क्या है? कषाय। हमने तो क्रोधमान माया लोग पढ़ी थी, क्या पढ़ा रहे हो आप उल्टा सीधा? नहीं, ये कषायों के स्तर हैं, कषायों के लेवल हैं, समझ लो कषायों की क्या कह सकते हैं अपन, तीव्रता है उनकी, कैटेगरी समझ लो आप, चार चार तरह के लेवल हो गए उनके, इंटेंसिटी इंटेंसिटी उनकी। तो सबसे ज्यादा जो है मैंने क्रोध मान माया लोभ, इनकी जो बहुत ज्यादा तीव्रता है वो कहलाती है अनंतानुबंधी, वो नहीं है सम्यक दृष्टि। अनंत भाव से चली आती है ये तो, सभी चारों ही चली आ रही है अनंत भाव से, तो है ना, तो बात उसकी नहीं है, बात ये है कि ये इसके स्वरूप कुछ अलग प्रकार का है। मिथ्यात्व के साथ में इसका रिलेशन, मिथ्यावृत्ति जीव को जो कषाय होती है वो अनंतानुबंधी कषाय होती है। तो अनंतानुबंधी कषाय एग्जाम्पल दिया शास्त्रों ने, मैं एग्जाम्पल देकर की बात करता हूँ, अनंतानुबंधी कषाय की इंटेंसिटी को बतलाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया। बहुत बड़ी पत्थर की शिला है और उसके ऊपर चोट पड़ी और दरार पड़ी है। दरार समझ क्रैक हो गया है ना, तो ये जो उसमें जो ब्रेक हो गया है अब वो कब भर जाएगी, वो कब वापस जुड़ जाएगी, उसके जुड़ने में जितना अधिक परिश्रम जोर ऊर्जा आए लगे समझ लीजिए आप, इतनी तीव्रता जिसमें है उस प्रेशर में वो है अनंतानुबंधी दशा। ऐसी लाइन जिसको मिटाना इजी नहीं हो वो अनंतानुबंधी दशा है। ऐसी रेखा है, ऐसी दरार जिसको भरना आसान काम नहीं है, या अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, इन चारों की पोजीशन है। अब सेकंड नंबर पर नहीं आसान नहीं, यदि आप मुझे असंभव कहोगे तो फिर अनंतानुबंधी मिटेगी नहीं, मिटेगी मिट तो जाती असंभव नहीं होती भाई साहब, लेकिन लगते सैकड़ों वर्ष बोले शिला के ऊपर दरार पड़ गई है ना, वो ऐसे नहीं कि मैंने दो महीने के अंदर मिट जाएगी, हो सकता है सैकड़ों वर्ष लग जाए, हजारों वर्ष लग जाए और हजारों हजारों वर्षों में वो कभी वापस फिक्स हो जाए, जुड़ जाए वापस, टाइम लगता है उसको। ऐसी भारी कशाय है अनंतानुबंधी। सेकंड नंबर की कशाय है, अभी देखो मैं इसको अपनी लाइफ के ऊपर बतलाऊंगा आपको, थोड़ा सा समझ में आएगी बात। सेकंड नंबर पर क्या था, अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान कशाय के लिए शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया, हल खेती करता है किसान और हल चलाता है, तो जो हल चलाता है चाहे वो ट्रैक्टर से समझो चाहे उसमें बैल से समझो, गेहूं वगैरह बोते समय तो जो लाइन खींची जाती है उसकी, वो इतनी कठोर लाइन होती है कि वो भी मिटना आसान काम नहीं है, लेकिन विद इन 3-4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ मैक्सिमम वो मिट जाएगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी वो लाइन जो खींच गई है ना वो, क्योंकि जब नई फसल चालू होगी तो दोबारा वो सब डालेगा और सब वो खाद डालेगा तो उनका तो मिट जाएगी वो, लेकिन कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, वो भी आसान नहीं है, उसका नाम अप्रत्याशन।
इतना
लोग
के साथ
नो 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 चारों चारों बिल्कुल बिल्कुल चारों के लेवल की चर्चा चल रही है, जिसके अनंतानुबंधी चले गई, जिसके अनंतानुबंधी चले गई उसके चारों का लेवल चला गया, क्रोध मान माया लोक का वो लेवल नहीं रहा, उतनी कचाय नहीं रहेगी। अप्रत्याख्यान के लिए सेकंड लाइन की बात कही मैंने, अब तीसरे नंबर पर है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान के लिए लाइन कही है, जो लाइन खींचती है वो लाइन है बालू मिट्टी में, रेगिस्तान में, जैसलमेर में, हमारे वहां है ऐसे हाथ से उंगली से लाइन खींचती, ये लाइन बीच पर गीली पर नहीं सूखी रेत ड्राई सूखी रेत के ऊपर, सूखी रेत पर लाइन खींचती, बोलो सूखी रेत पर लाइन खींचती है ये कितनी देर चलेगी, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा डिपेंड्स ऑन द लाइन, नहीं इट डिपेंड्स हवा कितनी देर में चलेगी, क्या रघुन भाई वो जो लाइन खींची है वो लाइन सिर्फ हवा का इंतजार कर रही है, इसका मतलब ये जो तीसरे नंबर वाली जो कचाय है ये कचाय इस तत्व ज्ञान की हवा का इंतजार कर रही है, जैसे ही अंदर में विचार आता है कि क्या कचाय करना, जिनवाणी क्या बता रही है वो कचाय साफ मंदे है, ये मंदे है कचाय, ये तीसरे नंबर पर है। अब चौथे नंबर पर कचाय है संयोजन पानी की लकीर, मुनिराजों के जीवन में होती है संयोजन कचाय, पानी की लाइन कितनी देर चलती, अरे आगे बढ़ो साफ हो रही है ही नहीं, टिकती नहीं है, मुनिराजों के जीवन में रहने वाली कचाय है संयोजन कचाय। अब हमारे लगाओ हमारे इनमें से कौन सी है, अनंतानुबंधी है, चारों है, चारों चारों है, अरे हमारे ही यदि इनमें से एक बच्चे भी तो अनंतान मंदिर के जाति मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो थी नहीं। थी तो चारों, ठीक है ना, लेकिन स्टेप बाई स्टेप जाएगी। तो अब क्या करें बोलो इनको मिटाने के लिए? अपनी लाइफ में देखो जरा, अब इनको थोड़ा सा क्या है, शास्त्रों ने इनकी कुछ नाप बतलाई, कुछ टाइम पीरियड से इनकी बात कही है। जैसे लास्ट वाली टीचर संजीवन कषाय के बारे में, संजीवन कषाय का टाइम पीरियड कहा है अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त संजीवन कषाय का टाइम पीरियड, माने वो कषाय कितने समय तक चलती है, उस कषाय की तीव्रता को कितने समय तक चलती है इस चीज से नापते हैं, चले कितनी देर तक वो कषाय अंतर्मुहूर्त तक चले तो संज्वलन, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा और 15 डेज से कम, अब सीधा अंतर्मुहूर्त के बाद में कितना 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर रहे तो प्रत्याख्यान, अंतर्मुहूर्त माने 48 मिनट, अंतर्मुहूर्त से कम है तो संज्वलन 48 मिनट के अंदर अंदर, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा है 48 मिनट से लेकर 15 दिन तक तो कौन सी होगी प्रत्याख्यान, और 15 दिन से ऊपर बढ़ गई कषाय तो 6 महीने तक का टाइम है, 6 महीने तक वो होगी अप्रत्याख्यान, और 6 महीने से भी ज्यादा चल गई तो क्या लाएगी अनंतानुबंधी। आप समझो जरा, झगड़ा हो गया किसी से क्या, अब कितने समय तक रखना बोलो? तो आप कोशिश ये करें अपनी लाइफ में कि संजोलन रहे, लेकिन रहती नहीं है, कितनी कितनी बांध लेते हैं बताओ आप। अरे याद रहता है उसको तुरंत धो देने लायक है, लाइफ इतनी इजी होनी चाहिए, कोई बात नहीं, लड़ लिए, झगड़ लिए, गुस्सा कर लिया, नाराज हो गए, इधर गए, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर 10-15 मिनट बाद में फिर वो पुराने लगो तो दो दो ऐसे कचाए होनी चाहिए। कोई व्यक्ति ये कहे, देखो मैं आपसे कहता हूँ, कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी है? जो लोग यहाँ मंदिर में आते हैं, स्वाध्याय में आते हैं, प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, क्या वो लोग कचाई नहीं कर सकते? क्या उनके गुस्सा नहीं हो सकता? और सबसे ज्यादा तो उनको ही सुनना पड़ता है, ये देखो प्रवचन सुनने जाते हैं गुस्सा तो सब नहीं हो जाएगा। गुस्सा तो कम नहीं हुआ, क्या कर्म करते हो आप? आश्चर्य लगता है कि क्या चार कचायों में से रोज ही एक कचाय बची है क्या? मान कचाय कचाय नहीं है क्या? माया चार कचाय नहीं है क्या? अंदर का लोग कचाय नहीं है क्या? वो भी तो कचाय है, लेकिन वो कचाय कभी दिखती नहीं है हमारे को, हमें तो कचाय मात्र क्रोध ही दिखती है, ऐसा लगता है गुस्सा ही कचाय है। चलो कोई बात नहीं, कौन व्यक्ति कितना स्वाध्यायी है और किसके अंदर ने कितना धर्म प्रवेश किया है, इस बात की नाप इससे नहीं होगी कि गुस्सा करता है या नहीं करता है, वह हो रहा है या नहीं हो रहा है लाइफ में, इससे होगी कि उसका क्रोध चलता कितनी देर है। अरे अभी जो व्यक्ति तत्वज्ञान का अभ्यास नहीं करते, जो व्यक्ति धर्म पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, समझते नहीं है, स्वाध्याय नहीं करते हैं, मंदिर नहीं आते हैं, है ऐसे माहौल में नहीं है, ऐसे समागम में नहीं है, उनके साथ में क्या होगा बताओ? उनके कषाय थोड़ी सी बात होगी और ऐसी गांठ बांध करके रखेंगे जो सालों चलेगी। ये कषाय है, प्रदर्शन नहीं, कुछ भी जवाब कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, बोला कुछ भी नहीं, लोगों को लगेगा शांत है, शांत नहीं है अनंतानुबंधी कषाय, और ये एकदम भड़क गए कि कोई बात नहीं, भड़क गए चलेगा कितनी देर ये बताओ? तो यदि कम देर के लिए चल रहा है, इट मीन्स उनके जीवन में कुछ न कुछ तत्व ज्ञान के संस्कार, ये परिवर्तन देखना चाहिए हमारे को। हमें ये नहीं देखना कि कितना गुस्सा किया, हमें ये नहीं देखना कि कितनी मायाचारी, कितना लोभ, कितना जो कुछ भी है, कितना लोभ है, कितना लोभ है। अरे वो लोभ कितनी देर का है, 5 मिनट का लोभ है। लोभ में यदि कोई बात कह दी तो 5 मिनट बाद में यदि ये बात आ जाती है कि क्या दम है इसमें, आता जाता है, ऐसे चलता है, तो इसका मतलब आपके जीवन में कुछ न कुछ धर्म के अंश, सच्चा धर्म तो नहीं कहेंगे, व्यवहारिक धर्म की बात चल रही है। सच्चा धर्म तो आत्मा की अनुभूति के बिना होता नहीं है, सम्य दर्शन के बिना तो धर्म की शुरुआत से नहीं होती है। सम्य दर्शन फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि श्रद्धा के बिना आगे नहीं बढ़ सकते आप। तो बाकी जो सदाचार है वो ऐसा चलता है। अब बताओ सम्य दृष्टि यानी जीव की अनंतानुबंधी चली गई, अब बिजनेस कर सकता है, करेगा, मर्यादा में करेगा, लिमिट में करेगा, बढ़ाएगा भी तो कोई बात नहीं, हानि के अन्याय नहीं करेगा, बेईमानी का नहीं करेगा, किसी से छल नहीं करेगा, एक मर्यादा में रहकर के कमीशन लेगा, 2 के 2000 नहीं मांगेगा, 2 के 4 तो सभी करते हैं बिजनेस में आजकल तो बिजनेस क्या कहें, फिर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब 2 के 4 होना थोड़ा सा कठिन है आज के इस समय में, लेकिन पहले का जमाना तो अभी बीच में जो दौर चल रहा था आज के 2-5-10 साल पहले का मान लो आप, तो वो 2 के 4, 2 के 10 होते थे और 2 के 100 होते थे। बहुत दिखते हैं हमारे वहाँ जयपुर के अंदर टूरिस्ट बहुत आते हैं, फॉरेनर बहुत आते हैं जयपुर में। मतलब कोई फॉरेनर यदि इंडिया घूमने के लिए गया है और उसको यदि 10-15 दिन बिताने हैं इंडिया में, 15 दिन के लिए गया है, तो 100% उसकी एक जगह जयपुर भी होगी, ऐसी जगह है जयपुर। आए हैं आप लोग? नहीं आए हो तो आना है बस।
एवरी जो तत्वज्ञान दीदी करेंगे यदि हम श्रद्धा से करेंगे तो एवरी जीव इस समय प्रति जीव तो हुआ है जो आत्मा अलग है, पर ऑल जीव कैन बी ए समय प्रति जीव, देन वो दे कैन थिंक अबाउट दैट वेरी कंट्रोल दैट ऑल दिस।
अब देखो सुनो मेरी बात, ऐसा है कभी तो वो गाय मंद हो जाती है, हमेशा बन जाए ऐसा नहीं है। आपने क्रोध को तो देख लिया कि 15 मिनट में शांत हो गया, लेकिन अंदर का जो लोभ था वो नहीं दिख रहा, जो कंटिन्यू चैनल से ज्यादा चल रहा था। अंदर का जो अभिमान बैठा हुआ था, अपनी प्रसन्नता की भावना, वो जो कंटिन्यू चल रही थी अनंतानुबंधी रूप, वो नहीं दिख रही हमारे को। तो समझ लो आप ऐसा कह सकते हैं दुनिया को क्रोध नामक कषाय तो दिखती है, मान मायाचार और लोभ नामक कषाय दिखती नहीं, जबकि कषाय तो चारों। जब तक अनंतानुबंधी गई नहीं है, जब तक मिथ्यात्व रहा है अंदर में, तब तक अनंतानुबंधी आदि चारों ही कषायें सब जीवों के मौजूद है। मैं तो नई कषाय करने या बांधने की बात करता हूं, तो कभी कभी ऐसा अपने को सोचना चाहिए कि हमारे लड़ाई झगड़े ज्यादा नहीं चले। आपको पता है कि आपने 10 लक्षण पर्व वगैरह ये साल में 3 बार क्यों आते हैं? क्षमा, साल में तीन बार का मतलब ये हो गया आपकी कषाय 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। बोलो नहीं अनंतानुबंधी यदि है तो आएगा भी तो हो सकता है। देखो आप सम्य दृष्टि होंगे तो कितने एग्जांपल हैं, भरत चक्रवर्ती सम्य दृष्टि, क्या सम्य दृष्टि उसी भाव के मोक्ष आने वाले बाहुबली के ऊपर चक्र चला रहे हैं, 6 खंड जीतने के लिए निकल गए, 6 खंड को जीत करके आ रहे हैं। रामचंद्र जी चाहे सम्य दृष्टि उसी भाव से मोक्ष आने वाले, मान ली तुम्हें मोक्ष गए भगवान बने रामचंद्र जी, और सम्य दृष्टि होते हुए रावण की सेना के साथ में 6 महीने युद्ध चल रहा है। अनंतानुबंधी नहीं है तो सम्य दृष्टि जी भिन्नता कर सकता है।
तो होने
हाँ
वही अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो अनुसार अनुभूति क्या चली जाएगी?
ऐसे कैसे जाएगी? आत्मा के अनुभव के बिना अनंत अनुबंधि नहीं जाएगी। वो तो 100% है, तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दोराह नहीं है। आत्मा का अनुभव तो मस्त है उसके लिए। अब मैं कहता हूँ, रामचंद्र जी थे 6 महीने तक युद्ध क्षेत्र में रावण की सेना के साथ में युद्ध करते थे, लड़ाई चलती रही उनकी। नेक्स्ट है 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने है। 6 महीने में 3 दिन पहले खत्म हुई होगी लड़ाई। 6 महीने से ज्यादा कचाई चल नहीं सकती उनकी। अब मेरा प्रश्न ये है, अनेक व्यक्ति जीव किसी को मार सकता है क्या? किसी की हत्या कर सकता है क्या? अरे रामचंद्र जी ने तीर नहीं चलाए। अभी समझ में आपको, अभी स्थिति समझनी पड़ेगी आपको। हाँ अभी समझ में आएगी, सब समझ में आएगी। अनेक व्यक्ति यानी जीव हिंसा कर सकता है ये कह करके मैं हिंसा करने की छूट नहीं दे रहा हूँ यहाँ बैठे पड़ू। तुम्हारे बाहर पकड़ करके किसी को मारो रोकेगी या क्या करते हो? अरे वो सम्य दृष्टि मार सकता, मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ। ऐसा नहीं चलेगा। ये तो भाई बात ऐसी है, सम्य दृष्टि हिंसा भी 4 प्रकार की होती है। जैसे ये क्रोध मान माया को सचाएं 4 प्रकार की होगी ना, अनंतानुपति अप्रत्यक्षण प्रत्यक्षण संयमन। इस तरह से हिंसा भी 4 प्रकार की होती है। नहीं, 4 प्रकार की हिंसा। पहले नंबर संकल्पी हिंसा, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। संकल्पी हिंसा, संकल्प करके किसी को मारना है ना, अपने दिमाग में प्लानिंग करके कि हमें इसकी हत्या करनी है, वो समझ कर रखे, ये संकल्पी हिंसा। तो सम्यक दृष्टि यानी जीवन 4 प्रकार की हिंसा में से संकल्पी हिंसा का तो त्यागी है। अब बाकी 3 प्रकार की हिंसा उसकी लाइफ में हो सकती है। कौन कौन सी? आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा कौन सी है? घर में रहेगा, नहाएगा धोएगा, कपड़े धुलेंगे, भोजन बनेगा, यह आरंभी हिंसा है। उसमें हिंसा होगी कि नहीं होगी? होती है। झाड़ू लगेगी तो जीव मरेंगे, साफ सफाई होगी, पानी ढोलेगा, भोजन पकाएगा, बनाएगा, सब इसमें हिंसा होगी, या आरंभी हिंसा हो सकती है उसकी लाइफ में। उद्योगी हिंसा, बिजनेस करेगा तो हिंसा होगी। कोई भी बिजनेस हो, यहाँ तक कि ज्वेलरी का बिजनेस हो, कपड़े का बिजनेस हो, धान आएंगे, रखेगा, पटेगा, जाएगा, आएगा, जो भी हिंसा है उसमें, ये कौन सी है? उद्योगी हिंसा। और तीसरे प्रकार की हिंसा भी हो सकती है उसकी लाइफ में, उसका नाम है विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा कैसी? डिफेंस, अपने बचाव के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, देव शास्त्र गुरु की सुरक्षा के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए। डायरेक्ट मारेगा नहीं किसी को, पहले तो कोशिश ये करेगा कि भैया यार देखो ये ऐसी मंदिर की आप क्यों, ये ऐसे क्यों नहीं कर सकते हो आप, गलत बात है, समझाएगा प्यार से। नहीं समझ में आती है तो फिर उसको दाम देकर के, देने करके निपटाने की बात करेगा, नहीं तो फिर दंड देकर के बात करेगा, और नहीं तो फिर मारने की बात होगी। अच्छा बताओ, कोई व्यक्ति यदि हमारे ऊपर प्रहार कर रहा हो तो क्या करेंगे? पहले तो बचने को तैयार करना, अब नहीं बच पाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या करना? दौड़े और उसने पकड़ रखा हो मारे, जो भी होगा। और कोई व्यक्ति यदि हमारे परिवार के ऊपर आक्रमण करे तो? रामचंद्र जी की तो पत्नी को उठा करके ले गया था भाई, वो घर गृहस्थी में रहता है। सम्यक दृष्टि यानी जी परिवार की सुरक्षा का पूरा उत्तरदायित्व अभी उसके ऊपर है। फिर मैं तो सम्यक दृष्टि हो गया, अरे यहाँ शरीर ही मेरा नहीं है तो पत्नी मेरी कैसे होगी? तो ले जा। ऐसे होंगे? अरे नहीं भाई, रहा ऐसा नहीं है। क्या संकल्पी हिंसा का त्यागी है, वो धनुष उठा करके वो मारेगा नहीं किसी को, वो हिंसा नहीं करेगा। लेकिन यदि विरोध का प्रसंग बने, बच्चों को बच्चा उठा करके ले जा रहा है, बोलोगे आतंकवादी, मारेगा कि नहीं उसको? और हाथ में लकड़ी आई, पत्थर आया तो उसको मारेगा कि नहीं उसको रोकने के लिए, और उसमें उसके लिए हत्या होगी? तो विरोधी हिंसा है। ये विरोधी हिंसा उसकी लाइफ में हो सकती है, ठीक है ना। संकल्प ही हिंसा नहीं है। नहीं सुनो तो सही, चक्रवर्ती जो होते हैं उनके इसी प्रकार का नियम होता है कि वे छह खंड को जीतते हैं लेकिन एक बूंद भी किसी के ब्लड की गिरती नहीं है, बहती नहीं है, किसी की हिंसा नहीं होती। चक्रवर्ती इतने पुण्यशाली इतने वैभवशाली होते हैं कि उनकी सेना जिस जगह जाकर के खड़ी होती है सामने वाला राजा उसकी आधीनता स्वीकार कर लेता है, तो कहीं उनको युद्ध नहीं करना पड़ता। लेकिन इतने समय तक घूम करके आए और फिर क्या हुआ बोलो, भरत चक्रवर्ती का तो बाहुबली के साथ में हुआ, भाई के साथ में ब्लास्ट में, और उसका भी कारण पता है क्या था आपको? अब बात आ गई है तो वो भी बता दूं, प्रसंग चल गया है तो। दोनों सम्यक दृष्टि थे, दोनों क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, भरत और बाहुबली, और दोनों भी भाव से मोक्ष जाने वाले थे। युद्ध होगा मान लो, दोनों तो मरेंगे नहीं, तुम्हें मर के थोड़ी ना मोक्ष होगा, उनको तो दीक्षा दे रही है, उनका तो नियोक्ता चाहे सम्यक दृष्टि है, क्योंकि मंत्रियों ने पूछा यार ये युद्ध सेना को लड़ानी है तो हम लोगों को ही मरना है सामने सामने, ये इनके लिए तो जोड़ना नहीं है, दोनों के चरण चली है मोक्ष जाने वाले, चाहे सम्यक दृष्टि इनके तो कुछ होगा नहीं, और सामने सामने हजारों लाखों लोग मरेंगे, कुछ उनके मरेंगे कुछ हमारे मरेंगे, तो क्या करें? कुछ ऐसा उपाय करो कि इन दोनों को आपस में लड़ने दो, तुम दोनों भाई आपस में फैसला कर रहे हो लड़ करके, खड़ी करके दोनों को आपस में खड़ा कर दिया, और दोनों को खड़ा करके जो युद्ध हुआ उसमें जो भी परिस्थिति ऐसी बनी, और सच में वो भी प्लानिंग थी इस तरह की कि सच में वो युद्ध नहीं था, वो युद्ध टालने का प्रयास था। हमें लगता है ना जल युद्ध, मल युद्ध, दृष्टि युद्ध, ये युद्ध नहीं थे वास्तव में, ये कोई शत्रुता या मारपीट का काम नहीं था इसमें, ये तो बात ऐसी थी कि जिससे आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव जग जाए। देख लो आप मल युद्ध कैसा है, आपस में एक दूसरे से कुश्ती लड़ेंगे तो कदाचित एक दूसरे के गले लगे, एक दूसरे को छुए, तो आपस में आखिर भाई तो है ही ना, एक ही पिता के पुत्र हैं ना दोनों, दोनों सगे भाई तो हैं, तो कदाचित प्रेम भाव जागृत हो जाए और झगड़ा मिट जाए, गुस्सा आ रहा होता है ठंडा पानी में डालो थोड़ा सा, गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, तो पानी में जाकर के जब जल युद्ध करेंगे तो शीतल पानी में जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हो जाए एक दूसरे के प्रति। और जो नेत्र युद्ध था, दोनों भाई आपस में एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते खड़े होंगे तो एक दूसरे के प्रति जो विरोध का भाव है वो चाहे प्यार में बदल जाए, निगाहों निगाहों में हो जाता है ना, तो आपस में इसी निगाहें मिले समझ लो, तो इसलिए वो प्लानिंग थी इस तरह की, उसमें भी किसी की हिंसा नहीं हुई थी। राम रावण के युद्ध के अंदर तो बहुत हिंसा हुई थी लेकिन वो पूरी हिंसा विरोधी हिंसा है ना। चलिए अनंतानुबंधी वगैरह की इतनी बात हुई, अनंतानुबंधी चली जाती है सम्यक्ति हो जाता है, अप्रत्यक्षम भी चली जाती है अनुभूति हो जाता है, प्रत्यक्षम भी चली जाती है मुनिराम हो जाता है। उनकी भी है हाथ से रति अरति शोक भय जिगुप्ता स्त्री वे सब, लेकिन ये पहचान बहुत मंद है, ये अपने आप में ही मंद पहचान है, इनको देख करके कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि कहता है। अभी आप हंस रहे थे तो कौन कहता है कि आप मंदिर में कचाई करते हो, अपना भी तो कचाए कचाए जैसी लगती है हाथ के कषाय गए थे। जब भगवान बनते हैं परमात्मा जो होते हैं उनके तो हाथ से भी नहीं होता, हाथ से कषाय भी नहीं होती, बीच रास्ता होती है हाथ से नहीं होती, अभाव हो गया है उसका।
जो इसमें जो पहला खरीद रहे
हैं
विद्या,
उसको छूटे बिना बाकी सब छूटना कोई मायना नहीं रखता। जो भी परिग्रह है क्या कहें परिग्रह चौबीस, हाँ नहीं चौबीस सुनो सुनो, दस बहिरंग और चौदह अंतरंग, चौबीस परिग्रह हैं, दस तो बाहर में हैं, कपड़े लगते मकान जायदाद है ये सब जो है बाहरी सब, ये सब क्या है बाहरी परिग्रह दस प्रकार के हैं, और अंदर में परिग्रह है चौदह प्रकार का। उनमें फर्स्ट नंबर पर जो परिग्रह है, पहले नंबर पर परिग्रह, उसका नाम है नित्यात्म। तो 24 प्रकार के परिग्रहों में नित्यात्म को पहले नंबर पर क्यों रखा? क्योंकि नित्यात्म के जाए बिना बाहर में कितना भी त्याग करो छोड़ दो वो परिग्रह का त्याग है ही नहीं, वो तब तक क्या
आंतरिक हो गया
है। इसलिए उस मिथ्यात्म के त्याग हुए बिना, मिथ्यात्म के छूटे बिना, मिथ्यात्म के नष्ट हुए बिना बाहर में कितना भी त्याग कर लो तो कुछ नहीं होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। ये तो हालत ऐसी है समझ लो, एक बार एक कुएं में बिल्ली गिर गई थी, कुएं में बिल्ली गिर गई मर गई, अब किसी को पता नहीं था क्या, तो पानी देखा हो रहे वो तो जहरीला पानी हो गया, खराब हो गया, बदबू आने लगे पानी में, तो क्या करें क्या करें, यार पानी बहुत खराब हो गया, एक काम करो पूरा पानी निकाल दो, तो पूरा पानी निकाल दिया क्या, नीचे बिल्ली पड़ी थी तो कोई बात नहीं, बिल्ली की कल जो भी हो पानी तो पूरा निकल गया ना, यहाँ निकल गया, अब देखते कल जो पानी आएगा वो तो अच्छा आएगा, नया आएगा कि नहीं आएगा। बात पानी कितना भी खाली कर दो अंदर में जो बिल्ली बैठी है पहले, जब तक वो नहीं निकलेगी तब तक पूरा पानी खाली कर देंगे पर भी वो बदबू नहीं जाएगी। तो जो परिग्रह छोड़ा है, इस परिग्रह छोड़ने का मतलब अंदर से मिथ्यात्म छोड़ना, और मिथ्यात्म किस चीज का नाम है, मिथ्यात्म अपनेपन का नाम है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े तैयारियों को देखा है, चार कमरों का मकान छोड़ करके 400 कमरों का मकान आप उनका हो जाता है, मैं कहता हूं मैं, मुझे मालूम है ये व्याख्यान सब सुनेंगे ना मालूम कौन कौन कहां कहां, लेकिन बात सच्ची है ना, छोटा सा छोड़ा और बहुत बड़ा अपना लिया, क्या किया बताओ, किसी के नाम की बात नहीं, हमें किसी की चर्चा नहीं करनी, तो बात ये त्याग किस चीज का किया ये बताओ, त्याग तो अपनेपन का करना था, त्याग तो राग का करना था, त्याग तो कषाय का करना था, त्याग तो मिथ्यात्म का करना था, असली त्याग तो उसका होता है, बाहरी त्याग में कुछ दम नहीं है, जीवन पूरा होते अपने आप ही हो जाता है, फिर कौन कौन ले जाएगा बताओ साथ में, साहब मैंने घर छोड़ दिया, नेता इसकी चीज का त्याग कर दिया, सुन जीवन पूरा हो जाएगा तो सब अपने आप ही छूट जाएगा, पर्याय बदलते ही सब अपने आप छूट जाता है, तो पर्याय बदलते ही मोक्ष हो जाता है, क्योंकि सब छूट गया, नहीं भाई साहब मिथ्यात्म नहीं छूटा, बाहर में सब कुछ छूटा और अंदर में मिथ्यात्म नहीं छूटा, तो बाहर छोड़ने को छोड़ना नहीं कहते, और अंदर में छोड़ना क्या चीज होती है, अंदर में छोड़ना ये चीज होती है, ये समझ लो आप, शरीर में नहीं, मुनिराज अपने आप को मुनिराज नहीं मानते, ये है बात, कोई मुनिराज अपने आप को मुनि मान रहे तो ये मुनि बनना चाहिए, क्योंकि मुनि तो एक अवस्था है, ये अवस्था बदल जाएगी, जो बदल जाए वो मैं नहीं हूं और जो मैं हूं वो बदलता नहीं, तो अपना अपन किसने करना बोलो, जो बदलता नहीं उसने करना, आप कौन हो साथी साहब, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन हो आप, कब से शुरू किया आपने बिजनेस, ये साहब 20 साल हो गए, क्या अच्छा तो आप 20 साल पहले तो आप नहीं थे, अरे क्या बात करें 20 साल पहले था मैं, तो बिजनेसमैन तो नहीं था 20 साल पहले, इसका मतलब मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो बिजनेसमैन होने के पहले भी था, मैं वो हूँ जो बिजनेस छोड़ने के बाद भी रहेगा, मैं कौन हूं, तो तो इसका मतलब यही दे रहा है जवाब आ रहा है कि मैं बिजनेस मैन हूँ, इट मीन की ये सही जवाब नहीं, ये सही जवाब चाहिए। आप कौन हो कि साहब मैं मुनि हूँ? ये तो मुनि नहीं, गलत फहमी है तुम्हारे। कोई मुनि होकर के यदि अपने आप को मुनि माने तो गलत है ये। मनिराज अपने आप को क्या मानते हैं? मनिराज अपने आप को आत्मा मानते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आप को आत्मा स्वीकार करता है। परमात्मा अपने आप को परमात्मा नहीं मानते, ये परमात्मा अपने आप को आत्मा मानते। हम कहते हैं परमात्मा तो उनको, वे अपने आप को आत्मा मानते हैं, अपने आप को त्रिकाली मानते हैं, अनादि अनंत मानते हैं, एक रूप मानते हैं। ये समझनी पड़ेगी बातें, बातें थोड़ी सी गंभीर है लेकिन जब तक नहीं समझ में आए तो सब कंफ्यूजन बना रहता है। क्लियर होने चाहिए सारे कंसेप्ट, क्लियर होने चाहिए सारे पॉइंट्स, क्लियर होने चाहिए दिमाग में, तब जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। डाउट रहेंगे तो कैसे होगा बता? हाँ है, बिल्कुल है। सम्यक्त्व के प्रकार में व्यवहार सम्यक्त्व है, बिल्कुल है। तो अब प्रश्न खड़ा हो गया हमारे दिमाग में, यार ये निश्चय समय थोड़ा कठिन लग रहा है नहीं भाई, तो अपन तो व्यवहार वाले से काम चल रहा है। सम्यक्त्व का प्रकार है ना एक व्यवहार सम्यक्त्व
है,
व्यवहार सम्यक्त्व नहीं। सुनो सुनो एक मिनट, व्यवहार सम्यक्त्व झूठा भी नहीं है। अभी क्या है स्थिति, चीज निश्चय सम्यक्त्व होता है ना तो व्यवहार होता है, निश्चय सम्यक्त्व के बिना व्यवहार नहीं होता। ये 100% है, ये निश्चय के बिना व्यवहार नहीं है। ये बातें तो हम रेलवे स्टेशन पर कई बार सुनते हैं, कई जगह पर लाइफ में जो जैन नहीं है उनसे सुनते हैं। एक आदमी पहुंच गया रेलवे के विंडो पर, उन्होंने भाई साहब टिकट दे दो। बोले कहां का? यार पैसे दे रहा हूँ टिकट दे दो, मैं पैसे दे रहा हूँ टिकट दे दो। भैया जाना कहाँ है तुम्हारे को? ये नहीं नहीं वो तो लकी नहीं है, ये पहले निश्चय कर। ये पैसे लेने और टिकट देने का जो व्यवहार होगा ये व्यवहार तो बाद में होगा, पहले निश्चय तो करो जाना कहाँ है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? बिना बिना निश्चय के नहीं होता व्यवहार। अब और सुनो, बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता तो कोई व्यक्ति ये कहे कि हम व्यवहार में कहे को इन बातों का पालन करें, चलने तो कुछ भी, जब निश्चय होगा तब देखेंगे। कि नहीं, जिनका बाहर में सामान्य सदाचार स्वरूप व्यवहार भी नहीं होता उनके जीवन में निश्चय प्रकट हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले लोक व्यवहार सामान्य सदाचार, ठीक है ना, लोक व्यवहार किसका नाम जिसकी लाइफ को देखकर कोई भी व्यक्ति उंगली ना उठा सके उसका नाम सामान्य सदाचार। सामान्य सदाचार मतलब वो समझ लो आप, ऐसे काम ऐसे कर्म ऐसी क्रियाएं ऐसी प्रवृत्ति जिसको दुनिया से छिपानी नहीं पड़े, क्या क्या जिसके बारे में ये नहीं हो यार लोग क्या कहेंगे, वो कोई देख नहीं ले, किसी को पता नहीं लग जाए, इसका मतलब गलत हो रहा है कुछ, कोई देख नहीं ले किसी को पता नहीं लग जाए यार नहीं है लोग, इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है। तो ऐसा यदि होगा लाइफ में तो सम्यक दर्शन का पात्र भी नहीं। हाँ जिसके लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है जैसी होती है एलिजिबल होनी चाहिए सामान्य लोक व्यवहार वाली, उसके बाद आत्म कल्याण के मार्ग पर लगे हुए वस्तु स्वरूप को जानकर पहचान कर उपदेश सुनकर समझ कर जब निश्चय सम्यक दर्शन होता है तो उसके बाह्य आचरण को व्यवहार सम्यक्त्व कहने में आता है। व्यवहार सम्यक्त्व होता नहीं है, निश्चय के साथ वाले को व्यवहार कहते हैं। जैसे समझ लो दूल्हा नहीं हूं तो बारात का क्या हुआ, बाराती है कि नहीं है? किसी जगह पर हमने बहुत भीड़ देखी, काफी लोग युवा करके आई थी, तो हमने कहा आप लोग कौन है? अरे साहब हम लोग तो बराती हैं, बरात में आए हैं। किसकी बरात में आए हो? दूल्हा कौन है? सर है तो कोई नहीं, वैसे तो बहुत सवार है, किसी को भी बिठा लीजिए। अरे भाई साहब ऐसा नहीं करता है क्या? मर नहीं हो तो बराती नहीं हो सकते, सबसे पहले वो जरूरी है, उसके साथ भी जो होंगे वो बराती कहलाएगी। तो व्यवहार समय दर्शन क्या कहलाएगा कि निश्चय होगा तो साथ में जो आपका व्यवहार होगा, आचरण होगा, प्रवृत्ति होगी, देवगुरु धर्म से आचरण होगा, हष्ट गुणों का पालन होगा, जैसा भी आप आचरण व्यवहार पालन करेंगे उन सबको कहेंगे व्यवहार समय दर्शन।
समझो
की शुभ निश्चय के बिना नहीं है।
हाँ और उसके तत्वों का आचरण करें जितना
हो सके, निश्चय किया निश्चय समय दर्शन। सुनिए ये जो निश्चय होता है ना, ये निश्चय आत्मा की अनुभूति के बिना नहीं होता। ये आत्मा की अनुभूति कैसी होती है? देखो मैं आपको एग्जांपल देकर के समझ में आती है भाई, सबके ऐसे नहीं समझ में आती। सब अपने पास उदाहरण तो अपने बैठ लीजिए होते हैं, चाहे जिससे बनाओ उसमें क्या है। देखो ऐसा समझो आप, एक कहीं आग लग रही है ना, और हमने समझाया भी आपके ऊपर लेक्चर दिया हमने, बहुत क्या किया हमने, अग्नि के ऊपर लेक्चर दिया। अग्नि गर्म होती है और बहुत अच्छे से समझाया, उसके हाथ लगाने से जल जाते हैं, छूने से बहुत गर्म होती है ना, कोई भी चीज पेपर लगाऊंगे तो वो जल जाएगी। और कौन घंटे का लेक्चर उसके ऊपर दिया, ये ऐसी अग्नि होती है। तो बोलो आपके अग्नि समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको अग्नि की उष्णता के ऊपर भरोसा है कि नहीं, श्रद्धा है कि नहीं? कितना सुनने के बाद भी कि हाँ पंडित जी आपके ऊपर पूरा भरोसा है, अरे मेरे पर नहीं अग्नि पे है कि नहीं है? आप इतनी बातें कर रहे हैं, हाँ हाँ भरोसा हो गया था, बार बार कई बार सुना है हमने कि अग्नि गर्म होती है होती है होती है। आपका वो श्रद्धान तब तक पक्का श्रद्धान नहीं हो सकता जब तक अग्नि को छूके नहीं देते। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये जो श्रद्धान होगा ना छूने के बाद वाला, वो श्रद्धान सुन सुन करके नहीं हो सकता। आप 10 साल से बराबर सुनते रहो अग्नि की उष्णता के बारे में और जवान से ये नहीं कहो कि हमें पूरा भरोसा है अग्नि गर्म है, लेकिन अंदर में वो श्रद्धा उस लेवल की नहीं हो सकती जो श्रद्धा छूने पर होती है। ऐसे ही हम कहें कि मैं आत्मा हूँ, मुझे पूरी श्रद्धा है, ये क्यों है? क्योंकि पिछले 20 साल से मैं भाई से सुन रहा हूँ, इतनी है श्रद्धा। इस वजह से नहीं सुनने से नहीं, क्या अब मैं आत्मा हूँ ये क्यों मानते हो आप? कि इतनी मानता हूँ कि वहां स्वामी धीरे बड़े आचार्य कह रहे हैं नहीं पड़ेगा, ऐसा होता है? अनुभव की चीज है भाई साहब, फीलिंग की चीज है। एक मरीज था और वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हो गया, एडमिट करा दिया गया उसको, भर्ती हो गया, ऑपरेशन हुआ उसका, काफी बड़ा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद में उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया, मर गया। और डॉक्टर साहब बहुत बड़े डॉक्टर, वो डिक्लेयर करके चले गए कि मर गया और ले जा रहे थे उसको, और उसने वो बीच में चेत आ गया उसको, कहाँ ले जा रहे हो? चुप रहे तू, मर गया, तुमको जलाने ले जा रहे। अरे नहीं नहीं मैं जिंदा हूँ। अरे तेरी मानू कि इसके बड़े डॉक्टर की मानू? वो इतना बड़ा डॉक्टर कैसे गया है कि मर गया? तो वो डॉक्टर क्या करेगा? किसी के ऑपरेशन नहीं चलता है कुछ भी, ये मैं अनुभव कर रहा हूँ भैया मैं जिंदा हूँ। बात फीलिंग की है, आप अपने आप को आत्मा अनुभव करते हो कि नहीं बताओ? यदि आप अपने आप को आत्मा अनुभव करते हो तो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आए बिना नहीं रहेगा, उसका नाम है सम्यक दर्शन। उसके बिना आनंद अनुबंधी नहीं जाती, उसके बिना मिथ्यात्व नहीं जाता। भले जवान से कितना भी कहते रहो, ऐसा भी हो सकता है आधी रात से जगा करके पूछे कि तुम कौन? बोले मैं आत्मा, तो भी सम्यक दृष्टि नहीं। प्रश्न भी आए, मैं कहता हूँ ये तो ऐसी हालत हो सकती है कि जैसे आधी रात में कोई व्यक्ति मेरे को उठा करके पूछे कि क्या नाम है? मैंने कहा संजीव गोदा। मैंने पूछा यार एक काम करते हैं, बच्चे को सम्यक दृष्टि बनाने का ये उपाय है, अपन इसका नाम ही आत्मा रखो। क्या फिर क्या होगा बोलो? अब उसको सोते उठते बैठते इतना क्या कहेगा, बोलो मैं आत्मा क्या? नीनो नहीं उठाते तो क्या बोलेगा, मैं आत्मा आत्मा नाम से आवाज लगाऊंगी तो वही देखेगा कैसी अनुभूति है, फीलिंग नहीं। वो जो त्रिकाली गुरु की जो चर्चा है, हूँ गायक परमात्मा छू, ये जो बात है ये फीलिंग नहीं है, इसलिए आत्मा की अनुभूति नहीं है उसको। यहाँ तो अनुभव पूर्वक करने दृष्टि होते हैं, गुणस्थान का बदलना ये शुद्धोपयोग पूर्वक होता है, आत्मा की अनुभूति पूर्वक होता है। पहले गुणस्थान से चौथा गुणस्थान ये आसान नहीं है, सुन सुन करके नहीं होता है, अनंत बार सुना लेकिन गुणस्थान नहीं बदला, पहले से चौथा गुणस्थान नहीं हुआ। कुछ तो कभी रह रही होगी, नौवे ग्रह तक चला गया, मुनिव्रत भार अनंत भार ग्रह को जाए, क्या क्या काम नहीं किए इसलिए बतलाओ मेरे को। धर्म के नाम पर, सब धर्म के नाम पर किए हैं, लेकिन सच कहूं तो कर्म में धर्म का भ्रम हो गया है, कर्म में धर्म का भ्रम हो गया है। बाहरी कर्म करता रहता है, समझता है मैं धर्म कर रहा हूं, मैं धर्म कर रहा हूं, मैं धर्म कर रहा हूं, ये धर्म नहीं है। बोलो
अनंत बार हमें इतनी इच्छा ली है, यहाँ जितने देखते हैं कभी तो आंतर क्यों नहीं?
वैसे तो चीज व्यक्तिगत है, हाँ वैसे तो चीज व्यक्तिगत है भाई, क्यों नहीं समझे, अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं किया, ये समझ लो आप। सब कुछ माना, अपने आप को किसी कमंडल वाला माना, अपने आप को बनेराज माना, अपने आप को त्यागी माना, अपने आप को तपस्वी माना, अपने आप को व्रती माना, अपने आप को महाव्रती माना, अपने आप को मनुष्य माना, लेकिन अपने आप को आत्मा नहीं माना, ये बेसिक चीज है। पर किससे है आप अपने आप को क्या मानते हो, और जो अपने आप को आत्मा मानते हैं अपने आप को जीव स्वीकार करते हैं, तो ये आत्मा मतलब भी क्या, आत्मा माँ है, आत्मा इसमें अपनापन है। जीव और आत्मा में क्या फर्क है, जीव और आत्मा इन दोनों में क्या अंतर है? वैसे तो जीव और आत्मा पर्यायवाची शब्द है, आत्मा शब्द शब्द की बात करते हैं, दोनों एक ही है, जीव कहो चाहे आत्मा कहो एक ही बात है, लेकिन मैं जीव हूँ ऐसा बोलते हैं तो थोड़ा सा कोई फीलिंग नहीं आती, लेकिन जब हम बोलते हैं मैं आत्मा हूँ तो फीलिंग आती है। आत्मा के साथ में माँ जुड़ा हुआ है, माँ जुड़ा है पत्नी नहीं, माँ और पत्नी में क्या फर्क है आप जानते हो? मान लो बच्चा, बच्चा और पत्नी, पति और बच्चा, माँ और पत्नी दोनों घर पर है, और कोई आदमी दो दिन घर नहीं आया, दो दिन से घर वाले बहुत परेशान थे, बोलो दो दिन बाद में घर पहुंचा, तो घर पहुंचने पर पत्नी का रिएक्शन क्या होगा, माँ का रिएक्शन क्या होगा? पत्नी कहाँ गए थे, और ये भी चले कहाँ लग गए थे? ऐसा नहीं हो सकता है, माने ये परवाह नहीं कि कुछ खाया के नहीं, कहाँ के माँ कहेगी कोई बात नहीं बेटा तू आ गया चल कुछ खा ले, तूने कुछ खाया के नहीं दो दिन से। ये आत्मा है, क्या अपनापन है? तो मैं कौन हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ये अपने में अपनापन, ये आत्मपन्ने की स्वीकृति जहाँ होती है वो उसके बिना मुनिपना नहीं होता। अनंत बार बने परिग्रह का त्याग किया लेकिन वो अपने में अपनापन नहीं हुआ, ये कमी रह गई, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, और वैसे तो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी बात है, अपने में अपनापन करना है इसमें क्या है, लेकिन बस इतना सा, जैसे कहते हैं ना हाथी निकल गया तो पूछ रहे, ये छोटी सी चाबी जैसी है, समझ लो जितना बड़ा प्लॉट होता है उतना बड़ा बंगला नहीं होता, और जितना बड़ा बंगला होता है उतना बड़ा उसका दरवाजा नहीं होता, जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा उसका ताला नहीं होता, और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती, लेकिन उस चाबी का पूरे बंगले पे अधिकार होता है। है इतनी की चीज, लेकिन खो जाए तो बाहर बैठे रहो भैया। अरे यार इतना बड़ा बंगला है, क्या स्थिति चाबी के पीछे पड़े हो? नहीं भाई साहब, ये समझ लो ये है स्थिति। ये जो अनंत संसार है, ये अनंत संसार इतनी सी चाबी के चक्कर में अटका है। ये चाबी ढूंढने की देर है, कौन सी चाबी? कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, बस ये चाबी ढूंढी इधर से इधर, और संदेह दर्शन हो गया, ज्ञानी हो गया, मोक्ष मार्गी हो गया, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये मार्ग बस, ये चाबी यदि नहीं खो गई, यदि समझ लो आपके पास से ये चाबी नहीं है यदि आपके पास में, फिर अनंत संसार फिर उलझे रहो। तो बातें तो बहुत से है ना, अपन थोड़ा सा बढ़े आगे भी। चलो कुछ कुछ रहा तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है इसी प्रकरण के बारे में? देखो चार सूत्रों की चर्चा कर चुके थे हम यहाँ तक। तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शन हो गया। तत्व अर्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्व और अर्थ दो चीजें मिलकर के तत्वार्थ शब्द बना हुआ है। आपके लिए तत्व के श्रद्धान का नाम मोक्ष नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। आपके लिए अर्थ के श्रद्धान का नाम भी नहीं है। तत्व और अर्थ दोनों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। चलो कल ने पैदा धन्यवाद हुआ, सूत्र की काफी चर्चा की करा अपने। तत्व निसर्गार्थ अधिगमार्थ वा सम्य दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? निसर्गज और अधिगमन, याद रखना भाई, ठीक है ना? परीक्षा कब लेनी है महेंद्र भाई? अभी डिक्लेयर नहीं किया ना, कोई बात नहीं, एग्जाम ले लेंगे अपन कभी भी। मंडे को है, चलो। तो क्या कहा? निसर्गज और अधिगमज, ये दो प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, निसर्गज और अधिगमज। फिर जीव ने शिष्य ने प्रश्न किया, किताबी जो आपने तत्व अर्थ श्रद्धान की बात कही थी, तो ये तो बता दो तत्व कौन से होते हैं? तत्व क्या है? जब तक तत्व को नहीं समझेंगे कैसे काम चलेगा? तो कहा देखो तत्व होते हैं जीव अजीवाश्रव बंग संवर निर्जरा मोक्षा तत्वम, ये सात तत्व है, ठीक है ना? वैसे तो ये जो सात तत्व यहाँ कहे हैं इस चौथे नंबर के सूत्र में, इस पूरे तत्वा सूत्र में उन्हीं सात तत्वों का वर्णन, ठीक है ना? फिर भी संक्षेप में यदि हम कहें तो जीव मैं हूं, अजीव शरीर आदि पदार्थ है, आश्रव हमारे मोह राग द्वेष आदि परिणामों को कहते हैं, विकारी भाव ये आश्रव कहलाते हैं, उनसे बंधने वाले कर्म ये बंध कहलाते हैं, या भाव बंध की बात करें तो उन विकारी परिणामों में ही कर्मों को बांधने रूप जो एक स्निग्धता है वो भाव बंध है। संवर किसे कहेंगे? आश्रव का नहीं होना, आश्रव का रुकना वो संवर कहलाता है। निर्जरा किसे कहेंगे? कर्मों के छूटने को निर्जरा कहते हैं, और समस्त कर्मों के छूट जाने को मोक्ष कहते हैं, ठीक है? बहुत चर्चा इन सात तत्वों के संदर्भ में हो सकती है, बहुत सुंदर प्रकरण है। आप तत्व का क्या स्वरूप है, तत्व किसे कहते हैं, है ना? इनको साथी क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तत्व साथी क्यों है और हम नहीं माने, और किसी को ये लाओ पढ़िए एक बात, एक काम करो यार, हम तो ये नहीं चलेगा हमारे, ये सात बात तो बहुत हो गए, बहुत लंबा कोर्स हो गया हमारे को, सात नहीं, हम तो एक जीव को मान लेने बाद इससे काम हो जाएगा अपना, तो क्या जरूरत है इतने समय उलझाने की? और कठिन शब्द कितने कठिन है? आप क्या था वो आप तीसरे नंबर पर है आज तक आधे लोगों से तो बोलने में नहीं आए, ये क्या शब्द है? संवर निर्जरार जाने क्या क्या शब्द कह दिया आपने, तो जीव की बात करो। चलो कोई बात नहीं, तुम जीव हो ये तो ठीक है ना, बात है ना? सात तत्वों में से जीव को जानना जरूरी है, तो एक जरूरी होगी बात समझ में आ रही, यहाँ का जीव को जानना तो जरूरी है, और कुछ नहीं जानूंगा पंडित जी। हाँ ठीक है, और कुछ मत जानना। अच्छा एक बात बता, तू जीव को जानने की बात कर रहा है, माने अपने आप को जानने की बात कर रहा है, तो मैं क्या नहीं हूं ये भी तो जानना पड़ेगा भाई, कंफ्यूजन में ऐसा नहीं हो जाए कि अपने ऐसा नहीं हो कि पड़ोसी के घर को अपना घर समझ ले, कंफ्यूजन में ये मैं हूं, यदि किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई ये जो शक्ल किसी दूसरे की दिखा दी फोटो, बोले ये तुम हो, पता नहीं मैं कहता हूँ क्योंकि अपनी शक्ल तो आपने आपको देखी नहीं कभी, मेरी आंखों ने मेरी शक्ल देखी नहीं, तो कहा भैया जो दूसरा है ना, जहाँ तेरे आत्मपने की, तेरे अपनेपने की, या तेरे को ऐसा लगता हो कि ये मैं हो सकता हूँ, जहाँ भ्रम होने की यहाँ संभावना हो, उसे जानना जरूरी होता है, उसके बिना काम नहीं चले। बोले चलो ठीक है। बोले वो कौन है? बोले वो अजीब है, अजीब है लेकिन कभी कभी लगता है ऐसा है जीव जैसा, जैसे कहानी चलते है ना, चीटी चल रही है, तो जीव है तो है कोई शरीर दिख रहा है, शरीर भ्रम होता है कि ये जीव है, तो जीव को जानो और अजीव को जानो, यार ये तो आपने बढ़ा दिया है। चलो कोई बात नहीं, जीव और अजीव इन दो के सिद्धांत से काम चल जाएगा अपना, हाँ दो के सिद्धांत से चला लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये सिद्धांत चाहते क्यों, चाहते क्या हो तुम ये बताओ। मैं तो क्या चाहता हूँ क्या बताऊँ आपको, सुखी होना चाहता हूँ। हर जीव क्या जवाब है आपके पास में, ये सुखी होना चाहता हूँ। बोले कितने सुखी होना चाहते हो? सर कितने का क्या सवाल है, पूरी तरह से सुखी होना चाहता हूँ 100%, पूरी तरह से सुखी होना चाहता हूँ। अच्छा पूरी तरह से सुखी होना चाहते हो तो सुनो, पूरी तरह से सुखी कोई तो मोक्ष कहते हैं, नहीं चाहिए तुम्हारे को, कैसे पूरी तरह से सुख को कहते हैं, तो चलो कोई बात नहीं मोक्ष भी ठीक है। माने अब अपील हो गए इससे आगे नहीं, जीव और अजीव तत्व को समझना जरूरी है, मैं कौन हूँ और कहाँ मेरे समय होने की संभावनाएं गलत पहली थी, जीव अजीव को समझना जरूरी हो गया। आप कहते हो कि पूर्ण सुखी होने का नाम भी मोक्ष है, मैं तो समझता नहीं था मोक्ष, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि भाई पूरे सुखी होने का नाम मोक्ष है, तो चलो मान लेता हूँ पूरे सुखी होने का नाम मोक्ष है। इन तीनों को समझ लेते हैं, इनके सिद्धांत की बात करते हैं, और मत करना फिर सुनो तो सही, पूरे सुखी होने का नाम मोक्ष है, तो क्या तुम सुख के मार्ग को नहीं जानना चाहोगे? सुखी होने का रास्ता पहचानना है कि नहीं? हाँ रास्ता तो पहचानेंगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है। बोले संवर और निर्जरा को रास्ता कहते हैं। आपको पूर्ण सुख चाहिए होते कहते हैं मोक्ष, और रास्ता क्या है? बोले रास्ता है संवर और निर्जरा। अरे यार दो और बढ़ गए, पांच बल और पांच तो अब इससे ज्यादा नहीं, इन पांच के सिद्धांत से अब तो कोई गड़बड़ी नहीं है, अपने आप को पहचान लिया, मुझे सुखी होना है, मैं शरीर में हूँ और मुझे पूरा सुखी होना है, और सुख का रास्ता ये, अब तो कोई चक्कर नहीं है कि नहीं थोड़ा पा रहे यार। वो क्या है, ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते से कभी कभी हमारे को भ्रम हो जाता है, गलत रास्ता पकड़ लेंगे तो पूर्ण सुख की जगह आनंद दुखी हो जाएंगे। बोले अच्छा तो गलत रास्ता कौन सा है, उसको समझना पड़ेगा, जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना है। बोले वो कौन सा होता है? तो उसको शास्त्रों की भाषा में आश्रम पद कहते हैं। सात जानना जरूरी है, सात तत्व में से एक तत्व को भी यदि आप कम करेंगे तो काम नहीं चलेगा, सातों को जानना जरूरी है, सातों तत्वों का स्वरूप जानना जरूरी है, तत्व का भाव भी जानो, तत्व के अर्थ को भी जानो, बराबर गहराई से इनके ऊपर जब भरोसा होगा, श्रद्धा होगी आपको, सब सम्यक दर्शन होता है। ये तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम, चौथे नंबर के सूत्र में एक सात प्रकार के तत्वों के नाम बतला दिए गए। ठीक है हो जाएगा, श्रद्धान हो जाएगा इनके ऊपर, आप आगे बताओ।
तत्वार्थ
सूत्र में पहले पढ़ने को सब डिटेलिंग थोड़ी करने वाला हूँ, फिर भी बता देता हूँ। पहला दूसरा तीसरा चौथा ये चार अध्याय जीव तत्व का वर्णन करने वाले, पहला दूसरा तीसरा चौथा दस अध्याय है तत्वार्थ सूत्र में, चार अध्याय जीव तत्व का वर्णन करने वाले, पांचवा अध्याय अजीव तत्व का वर्णन करने वाला, छठवां और सातवां दोनों अध्याय आश्रम तत्व का वर्णन करने वाले, आठवां अध्याय बंध तत्व का वर्णन करने वाला, नौवां अध्याय संवर और निर्जरा का वर्णन करने वाला, और दसवां अध्याय मोक्ष तत्व का वर्णन करने वाला। तो तत्वार्थ सूत्र के जो दसों अध्याय है माने पूरा तत्वार्थ सूत्र सात तत्व का वर्णन है। अब ये कभी कभी क्या होता है, बहुत प्रैक्टिकल बात कहता हूँ मैं आपसे, हम बहुत पुरानी घटना है, ये घटना होगी कोई 97-98 के आसपास की। एक जगह पर मेरे को प्रवचन के लिए बुलाया, कक्षाओं के लिए बुलाया, पाठशाला और शिविर लगाया इस तरह का काफी बड़ा, और मैं गया वहां तो पता है क्या हुआ, ऐसे लोग थे कुछ
ट्वेंटी नाइन
था। हाँ अभी कितनी है उस समय तो होगी, कितनी होगी 16-17 पता है, 18 साल की होगी। उससे भी बहुत पहले से करता था मैं तो अभी तो मैं बात बतलाता हूँ क्या हुआ। घटना ऐसी कि उन्होंने कहा पंडित जी देखो एक बात है, आपको बुला तो रहे हैं हम, लेकिन आप वहाँ है ना ये बताना कि पूजन कैसे करते हैं और क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, ये जो आप है ना वो तत्व तत्व की बात मत करना, बहुत बिल्कुल सच्ची घटना है। क्या बोले मेरे से, अरे तत्व से क्या मतलब है इन सब बातों से, जीव अजीव आश्र बंध सब नाम वाम कराते हो या कराते हो, उनकी परिभाषाएं कराते हो, इनसे कुछ होना जाना तो कुछ है नहीं, इन तत्वों से क्या होता है बताओ। कि दुनिया में लोग समझते तो कुछ है नहीं और बात इस तरह की करते हैं कि सब्जेक्ट हम देंगे आपको। अरे आपको मालूम है मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, कैसा पढ़ाने वाला हूँ, क्या समझाऊंगा, आपको कुछ पता है, आप जानते हैं तत्वों के बारे में, बोले हम जानते तो नहीं है, तो फिर नहीं जानते वही तो बताना है। बताए क्या कहा उन्होंने, नहीं बताओ तत्व वगैरह के बारे में तो कोई कुछ जानता नहीं है, इसलिए वो तो रहने दो, ये पूजा वूजा के बारे में सब समझते हैं वो बताओ, मैंने कहा सब समझते हैं तो मेरी क्या जरूरत है, जो नहीं समझते हैं वही तो बताने आपका, आप ये चीज नहीं समझते वही चीज तो समझानी है, आप यदि तत्व नहीं समझते तो तत्व समझने की कोशिश तो करो एक बार, जैन द्रव्य क्या है, सात तत्व क्या है, वैसा ही जैन धर्म की आधारशिला है, इनके बिना जैन धर्म नहीं होता। अब आप छह द्रव्य सात तत्व के नाम नहीं जानो और आप कहो मैं जैन धर्म को जानता हूँ समझता हूँ, तो फिर कुछ नहीं, फिर तो आप जैन धर्म के प्रदर्शन को जानते हो। क्या कहा मैंने, जैन धर्म का प्रदर्शन क्या है, हम रात को नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, हम इसको छोड़ दिया, इसका त्याग कर दिया, तो दूसरे देखने वाले कई विकार है, बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है, तो क्या हो रहा है भाई साहब, ये जैन धर्म का प्रदर्शन मात्र हो रहा है, अंदर में जैन धर्म की खबर ही नहीं है। जैन धर्म किसका नाम है, छह द्रव्य सात तत्वों को जाने बिना समझे बिना जैन धर्म समझने नहीं आ सकता। फर्स्ट स्टेप है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान माने मोक्ष तत्व, भगवान माने मोक्ष तत्व, मुनिराज माने संवर निर्जरा तत्व, मैं जीव तत्व, शरीर अजीव तत्व, और अपने आप को जीव तत्व नहीं माना तो आश्रव बंध तत्व, समझ में आई, ये सात तत्व पूरा संसार है, संसार भी इन सात तत्वों से है और मोक्ष भी इन सात तत्वों से भी, क्या मतलब कि इनकी पहचान नहीं होने से संसार है और इनकी पहचान होने से मोक्ष, जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता है, खोलने के लिए अलग चाबी और बंद करने के लिए अलग चाबी, ऐसा नहीं है। क्या बात करते हो, इससे तो बंद हुई थी पंडित जी, खोलने वाली काओ इससे बंद हुई थी, अरे खुलेगी नहीं इसी से, इधर हमने बंद की चीज से, हम जब इसको लगाते हैं तो बंद होता है ताला, ये तुम उल्टी घुमाते हो, तुम इधर घुमाओ, घुमाने का फर्क है चाबी का फर्क नहीं है, बात क्या है श्रद्धान का फर्क है भाई साहब, ये सब श्रद्धा से मोक्ष होता है, कि श्रद्धा तो बहुत है हमारे को, पिता की श्रद्धा है तुम्हारे को, ये श्रद्धा है कि मैं संजीव को जाऊं कि जा बेटा दे गोद में, ये श्रद्धा काम नहीं चलेगी, बोलो ये मिथ्या श्रद्धा है, ये उल्टी श्रद्धा है, श्रद्धा की चाबी उल्टी घूम गई तो नरक निगोद में, और श्रद्धा की चाबी यदि सही घूम गई तो मोक्ष में। ये चाबी घुमाने का काम है, किधर घूम गई बोलो, सही दिशा में घुमाना कि गलत दिशा में घुमाना। अब सही दिशा में घुमाने के पहले समझना तो सही कि सही दिशा कहती है। दर्शन हो गया, ये जीव तत्व सातों तत्वों का श्रद्धान होता है, माने सामने दृष्टि को अपने जीवत्व का श्रद्धान भी होता है। सामने दृष्टि को मैं शरीर नहीं हूँ, इसका नाम अजीव तत्व का श्रद्धान भी है, और सामने दृष्टि को इस बात का भरोसा है कि पूर्ण सुख नाम की कोई चीज होती है, मोक्ष नाम की कोई चीज होती है, इसको तो मोक्ष का भरोसा ही नहीं है। अब मोक्ष का भरोसा नहीं है, कई लोग तो ऐसे मिलते हैं जिनको सम्यक दर्शन तक का भरोसा नहीं है। कई लोग ऐसे मिलते हैं मुकुंद भाई को, ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन होता भी है क्या पंडित जी, किसी को क्या कहते हैं लोग, सम्यक दर्शन की बातें सुनी है हमने आज तक कभी, ये सम्यक दर्शन होता भी है क्या किसी को? हाँ भैया होता है, ज्ञानियों को होता है। फिर कहता है दिखाओ हमारे को कोई एकाध सम्यक दृष्टि, क्यों तुम क्या करना चाहते हो उसे देख के, मारोगे उसको, तुम क्या करोगे बताओ, तो उसको देख करके किसी के समय दर्शन की पहचान नहीं करना। ज्ञानियों का जीवन अपने आप दिखता है, अंदर में जिसे शुद्ध तत्व की अनुभूति होती है उसका बहिरंग जीवन कितना पवित्र होता है, कितनी निर्मलता होती है, यह बात अपने आप झलकती है उसके बाहरी जीवन से, उसकी लाइफ से भी दिखेगी, उसकी वाणी से भी दिखेगी। और अपने यहाँ तो समंत भद्र जैसे आचार्य तू कहते हैं परीक्षा करके निर्णय करना, और कैसे परीक्षा करना कि वाणी से परीक्षा हो जाती है, बस कौन सच्चा है और कौन झूठा है उनकी वाणी से परीक्षा हो जाती है कि वो बोल क्या रहे हैं। जब पता है मैं कभी ऐसी बात कहता हूँ प्रवेश, जब कभी ऐसी बात बोल देता हूँ कि परीक्षा करो, तो लोग पता है क्या कहते हैं, ये आए बड़े आए परीक्षा करने वाले, गृहस्थ होकर के मुनिराजों की परीक्षा करोगे तुम गृहस्थ और मुनिराजों की परीक्षा करोगे? उनका सुनो, मुनिराजों की नहीं, हम तो भगवान की भी परीक्षा करते हैं। समझ में आती है बात, शस्त्र चमर भामंडल ये भगवान के लक्षण नहीं है, भगवान की वीतरागता लक्षण है। समझ में आ रही है बात, यद्यपि भगवान के मस्तक पर शस्त्र होता है, बगल में चमर होंगे, लेकिन छत्र चमर होने से वो भगवान नहीं होते, माया विश्व की दृष्टि चलती है। ऐसी कथाएं मिलती है, ऐसी बहिर्ती रानी का प्रसंग मिलता है अपने, बोलो तीर्थंकर का समो शरण आया है, 25वें तीर्थंकर का समो शरण आया है, परीक्षा करेंगे वैसा नहीं होते 25वें तीर्थंकर, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, 25वें तीर्थंकर की बात झूठी बात है, समम चरण लगा हुआ है कि झूठा है वो, समम चरण नहीं हो सकता। किताब देव लोग आ रहे हैं ये मायावियों के भी देखा जा सकता है, चक्र है चमर है कि कुछ नहीं है, धोखा है सब। देखो आप, ये तो परीक्षा प्रधान है वैसा जैन धर्म, देखा देखी नहीं चलता है, ये कुल परंपरा का धर्म नहीं है, ये परीक्षा प्रधान है। आप यहाँ आते हो और यदि इसलिए आते हो कि पिताजी आते थे, और इसलिए आते हो कि हम जैन है साहब जैन मंदिर पे नहीं जाएंगे तो कहाँ आएंगे, तो गलती से कहीं दूसरे धर्म में पैदा हो जाते तो वहां जाकर के माता के धर्मात्मा बनता समझ ले। आप जैन हो इसलिए जैन मंदिर में आ गए, आप हिंदू होते तो हिंदू मंदिर में चले जाते, आप मुस्लिम होते तो मस्जिद में चले जाते, आप क्रिश्चियन होते तो चले जाते, एकदम नहीं है, क्योंकि ये कुल परंपरा से धर्म नहीं होता। ये क्यों हम क्यों माने इसको, अंदर से जिसमें तर्क करने की बुद्धि होती है वो किसी निर्णय पर पहुंचता है, मैं सात तत्व क्यों मानूं, मैं क्यों पढ़ूं, इसे पढ़ने से मुझे क्या मिलेगा, और इसको पढ़ने से मिलेगा ही मिलेगा इसकी गारंटी कैसे है। इन बातों को गहराई से समझो और अंदर से निर्णय करो, जब अंदर से उस बात का निर्णय होता है तो सामने दर्शन प्रकट होता है, आत्मा की अनुभूति होती है, मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। ये मोक्ष शास्त्र है, इस शास्त्र का नाम। तो हम सभी के जीवन में इन सब बातों को पढ़कर सुनकर समझकर हृदय में स्वीकार कर आत्मा की अनुभूति हो, मोक्ष मार्ग प्रकट हो, ऐसी मंगलमय भावना पूर्वक आज की बात।